आरव साक्षी के साथ उसके वार्ड में बैठा हुआ था। बातों बातों में साक्षी ने माहिरा की बात की। साक्षी कुछ ही समय में माहिरा के पजेसिव नेचर को समझ गई थी और आरव को इस बारे में समझा रही थी कि फ्यूचर में आरव और उसकी पार्टनर को माहिरा से खतरा हो सकता है। आरव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बाहर आ गया। बाहर आते ही वो हॉस्पिटल के कैंटीन एरिया में गया और खुद के लिए कॉफ़ी ऑर्डर की। आरव वहाँ बैठकर सोच रहा था, मुझे उस डॉक्टर का ख्याल क्यों आ रहा है? मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता। मेरे और माही के बीच प्यार ना सही, लेकिन एक डील है और उसी डील के चलते मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। सब कुछ जानते बूझते मैं बेवकूफ़ी क्यों करूँगा? आरव वहाँ बैठकर खुद से बातें कर रहा था, तभी कबीर उससे बात करने के लिए हॉस्पिटल के कैंटीन एरिया में आया। उसने आरव की कुछ बातें सुन ली थीं। कबीर उसके पास वाली चेयर पर बैठते हुए बोला, प्यार अपने आप में एक बेवकूफ़ी है सर। आप जानते हो कि आप बर्बाद हो रहे हो या आपकी वजह से सामने वाले को तकलीफ हो सकती है, पर फिर भी ये कहाँ समझता है? बस ज़िद पर अड़ जाता है कि आपको उसी के साथ रहना है, हर सिचुएशन में, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। कबीर बिल्कुल किसी फ़िलॉसफ़र की तरह बातें कर रहा था। आरव ने पहले उसकी बात गौर से सुनी और फिर उसे वहाँ देखकर हैरानी से पूछा, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दादी को होश आ गया है क्या? दादी को होश नहीं आया, मैं आपसे बात करने के लिए आ रहा था। मैंने देखा आप साक्षी मैम के रूम से निकलकर इस तरफ आ रहे हैं, तो बस आपके पीछे आ गया और आपकी बातें सुन ली, कबीर ने बताया। आरव ने उसकी बात पर सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। वो कुछ नहीं बोला और परेशान चेहरे के साथ चुपचाप बैठा था। उसे चुप देखकर कबीर ने कहा, शुरुआत में मुझे आपकी और माहिरा मैम की डील से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, पर अब लगने लगा है आपको वो डील नहीं करनी चाहिए थी। आप किसी को लाइक करने लगे हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है, आरव ने हड़बड़ाकर जवाब दिया। तुम ये ज्ञान किसी और के सामने झाड़ना और गलती से भी माहिरा के सामने ये मत बोल देना कि ये डील करके मैंने गलती की है। मेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें वो उसी टाइम मार देगी। हाँ, ये मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता, कबीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आरव कबीर से कुछ भी पूछने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने पूछ ही लिया, अच्छा कुछ देर पहले तुम जो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्या वो सच है? तुम और युवानी रिलेशनशिप में हो, क्या तुम उसे हर खतरे से बचाना चाहते हो? हाँ, अब तक बचाया है और आगे भी बचाऊंगा। वैसे उस पर कभी इतना बड़ा खतरा आया नहीं है। आपकी तरह पहले मैं भी बहुत ओवरथिंकिंग करता था कि मैं जो काम करता हूँ उसके बाद युवानी मुझे अपना पाएगी या नहीं, मैं अपने दुश्मनों से उसे प्रोटेक्ट कर पाऊंगा या नहीं, या इन फ्यूचर कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से हमें अलग होना पड़ा तो फिर क्या होगा? कबीर ने अपने दिल की बात आरव के सामने रखी। तो फिर तुमने क्या डिसाइड किया? और ये सब बहुत मुश्किल रहा होगा ना? युवानी का क्या रिएक्शन था जब उसे पता चला कि तुम माफिया से बिलोंग करते हो? आरव ने एक साथ काफ़ी कुछ पूछ लिया। वो तो बहुत एक्साइटेड हो रही थी, मुझे फ्यूचर की चिंता थी, तो उसने कहा प्रेजेंट में जीते हैं, अगर प्रेजेंट में साथ रहे, प्यार से रिश्ते को निभाया, तो फ्यूचर भी देख ही लेंगे, कबीर ने जवाब दिया। बात तो सही है, आरव ने कहा। कबीर से बात करने के बाद उसे बेहतर लग रहा था। उन दोनों के बीच कुछ देर की चुप्पी छाई रही। इतने में उनकी कॉफ़ी आ गई थी। कबीर ने वहाँ घुसते ही अपने लिए भी कॉफ़ी ऑर्डर कर दी थी। आरव कॉफ़ी पी रहा था तभी कबीर ने अचानक पूछा, आप परेशान लग रहे हो, वैसे ये एम्बर आइज़ वाली लड़की का क्या चक्कर है? दादी भी इस बारे में जानती है लेकिन मुझे कुछ नहीं पता, कहीं ये वो डॉक्टर तो नहीं जिसने दादी की सर्जरी की थी? कबीर के पूछने पर आरव की कॉफ़ी अटक गई और वो खांसने लगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, मुझे वो बीमार डॉक्टर बिल्कुल पसंद नहीं है, बोलते हुए आरव ने उसकी तरफ घूर कर देखा। पर उस बीमार डॉक्टर की आप काफ़ी अच्छे से केयर कर रहे थे, कबीर ने उसे परेशान करते हुए कहा। ऐसे तो मैं सबकी केयर करता हूँ, तुम्हारी भी करता ही हूँ, दादी की भी है, माही की भी, देखा ना साक्षी के वार्ड में था, उसकी भी केयर करता हूँ, आरव उसे सफाई देने की कोशिश कर रहा था। उसकी बातें सुनकर कबीर मुस्कुराकर बोला, सबकी केयर करते हैं ये अच्छी बात है, लेकिन आप कब से एक्सप्लेनेशन देने लगे? याद है ना उस डॉक्टर ने आपकी गाड़ी खराब की थी, ये सही मौका है उससे बदला लेने का। नहीं, एक गाड़ी तो थी, अब क्या एक गाड़ी के लिए उस बेचारे की जान लोगे? आरव ने झट से कहा। हाँ तो ये बात तो मैं भी बोल ही रहा था कि एक गाड़ी तो है, तब तो आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे, कबीर आरव को लगातार परेशान किए जा रहा था। उसी बातें सुनकर आरव ने चिढ़कर कहा, छोड़ो मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। आरव अपनी चेयर से उठा और वहां से बाहर चला गया। कबीर के फेस पर स्माइल थी। अगर इन्हें उसके पास लाना है तो मुझे सबसे पहले माहिरा मैम को यहाँ से भेजना होगा। कबीर भी चाहता था कि आरव माहिरा के अलावा किसी और के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़े। बस यही सोचकर वो माहिरा को वापस भेजने के प्लान्स बनाने लगा। आयु को जहान के फाइट क्लब में आए हुए सुबह से शाम हो चुकी थी। लगभग डेढ़ घंटे तक पंचिंग बैग पर पंच करने के बाद जहान ने उसे कुछ रेगुलर एक्सरसाइज करवाई और फिर लंच करने के बाद उसने ट्रेडमिल पर वॉक किया। लगभग 6 बजे के करीब जब जिम करने के लिए बाकी के लोग आने लगे, तब जहान ने आयु को अपने केबिन में बुलाया। वहां फ्रैंकी भी मौजूद था। आयु की हालत देखकर फ्रैंकी ने हंसते हुए कहा, आपकी तो एक दिन में ही हालत टाइट हो गई मैडम। आयु पसीने से भीगी हुई थी और उसका चेहरा लाल हो गया था। वो काफ़ी थकी हुई भी लग रही थी। अब बताओ आगे कंटिन्यू करना है या नहीं। ये तो पहला दिन था इसलिए मैंने तुमसे ज्यादा कुछ नहीं करवाया, लेकिन आगे दिन ब दिन तुम्हारी ट्रेनिंग और हार्ड होती जाएगी। जहान ने उसे पहले ही वार्निंग देते हुए कहा। पहले मुझे बैठने के लिए जगह दो, आयु ने थके हुए स्वर में कहा और फिर एक चेयर पर आराम से बैठ गई। कुछ देर रिलैक्स करने के बाद वो बोली, अफकोर्स कंटिन्यू करना है, पहला दिन था इसलिए ज्यादा थक गई हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हार मान ली है। वेरी गुड डॉक्टर, चलो अब घर जाओ और जाकर पूरी रात मजे से आराम करो। आज रात थके होने की वजह से तुम्हें नींद भी बहुत अच्छे से आएगी, जहान ने कहा। उसकी बात सुनकर आयु ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, नो जहान, मेरे पास रेस्ट करने का ऑप्शन नहीं है। थोड़ा टाइम रेस्ट करने के लिए मिल सकता है, लेकिन मेरे पास सोने के लिए पूरी रात नहीं है। मुझे हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट करनी होती है। अरे बाप रे, फिर तो कहना पड़ेगा आप सच में बहुत डेडिकेशन दिखा रही हैं डॉक्टर मैडम, फ्रैंकी ने उसकी तारीफ करते हुए कहा। जहान ने उसकी बात सुनकर अपने चेहरे के भावों गंभीर किया और कहा, फिर मैं तुम्हें ट्रेनिंग कंटिन्यू ना करने की एडवाइस दूंगा, ऐसे तो तुम थक जाओगी और बीमार हो जाओगी। तुम मेरा रीशेड्यूल क्यों नहीं कर देते, आयु ने पूछा। हाँ ठीक है, इस बारे में सोचता हूँ, पर आज तो तुम्हें रेस्ट करना ही होगा। पहला दिन है तो तुम्हें ओवर पेन होगा, मुझे नहीं लगता कि इतने दर्द में तुम ड्यूटी कर पाओगी। एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकती क्या, जहान ने कहा। हाँ मैं ऑफ ले सकती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे घर नहीं जाना, क्या तुम प्लीज मुझे यहाँ रुकने दोगे, आयु ने पपी आइज बनाकर पूछा, जिस पर जहान ने नामे सिर हिला दिया। देखो मैंने तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए हाँ किया है, गोद नहीं लिया है, जो तुम मेरे यहाँ ही रहोगी खाओगी, जहान ने उसे रुकने से साफ मना कर दिया।
जहान के मना करने के बाद आयु ने फ्रैंकी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा तो उसने भी कंधे उचकाकर मना कर दिया। आयु ने जहान से फिर कहा, मैंने तुम्हारा फ्री में ट्रीटमेंट किया था, उसके लिए तुम क्या एक रात फ्री में रुकने के लिए एक छोटा सा कमरा नहीं दे सकते? तुम जिस छोटे से कमरे की बात कर रहे हो वहां सिर्फ लड़के रहते हैं, तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा, कम्फर्टेबल फील कर पाओगे इतने लड़कों के बीच, जहान बोला। तुम दोनों हो ना, मुझे पता है कि तुम दोनों के होते हुए मुझे अनकम्फर्टेबल फील करने की जरूरत नहीं है, तुम सब संभाल लोगे, आयु केयरलेस वे में कहा और उठकर चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगी। इस बार उसने जहान और फ्रैंकी के हाँ या ना का इंतजार भी नहीं किया। उसके जाते ही फ्रैंकी ने कहा, ये डॉक्टर हम पर कुछ ज्यादा ही यकीन नहीं करती क्या, हम तो काम भी इलीगल करते हैं। एक लड़की बेहतर तरीके से समझ सकती है कि कौन उसे किस नज़रों से देखता और छूता है। हम भले ही कितने भी इलीगल काम करें पर उसे भी दिखता है कि हमारे आंखों में लड़कियों के लिए रिस्पेक्ट है। खैर अब इन सबको छोड़ो, उसके रहने का इंतजाम करो। उसके सामने मैंने कहा नहीं, लेकिन उसने बहुत बार हमारी मदद की है। ऐसा करो, बाजार जाकर एक जोड़ी कपड़े भी ले आना। जहान ने उसे सब कुछ समझाया और फिर कुछ पैसे दिए। उसकी बात मानकर फ्रैंकी तुरंत वहां से चला गया। वहीं आयु वॉशरूम में थी, वो अपना हाथ मुंह धो रही थी। ऐसा करती हूँ, अयान को बोल देती हूँ कि आज मैं हॉस्पिटल नहीं आ पाऊंगी, आयु ने शीशे में देखकर कहा। वो वाकई काफी थकी हुई लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ अयान गौरवी जी के चेकअप कर रहा था, उन्हें अब तक होश नहीं आया था तो आरव उनके लिए परेशान हो रहा था, वो भी उनके पास ही था। इस बीच आयु का कॉल आया। अयान के दोनों हाथ बिजी होने की वजह से उसने आरव से कहा, प्लीज क्या आप मेरा कॉल पिक कर लोगे? हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारा असिस्टेंट जो हूँ अभी कॉल पिक कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आऊंगा और रात को सोने से पहले पैर भी तो दबाने हैं, आरव ने सार्कास्टिक वे में कहा। उसने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे आयु के नाम को देखा और सिर हिलाकर कहा, आयु ये कैसा बच्चों जैसा नाम हुआ, बोलते हुए उसने कॉल पिक कर लिया। अयान कुछ कह पाता उससे पहले आरव ने फोन का स्पीकर ऑन कर दिया था। वहीं कॉल पिक होते कि आयु तुरंत बोली, अयान प्लीज तुम आज हॉस्पिटल में देख लेना, मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही रेस्ट करने के लिए कहा था, मैं देख लूंगा पर अपना ख्याल रखो, कहकर अयान ने कॉल कट कर दिया। वो आरव के सामने आयु से ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। वहीं आयु की तबीयत खराब होने का सुनकर आरव के चेहरे के भाव सर्द हो रहे थे, तो अयान भी अच्छे से जानता था कि अब आरव उसे सब कुछ पूछने वाला है।